नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। तेजस्वी प्रसाद यादव अब संगठन से जुड़े सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार की जातीय जनगणना पर उठाया सवाल, कहा उनकी पार्टी की सरकार बनी तो नए सिरे से कराई जाएगी जनगणना। और वक्फ संशोधन अधिनियम पर विमर्श के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी पटना पहुंची, हितधारकों के साथ कर रही है विचार विमर्श। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज संपत्ति स्वामियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं।
एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना लागू होने के बाद से पिछले 5 वर्षों में 2,25,00,000 से अधिक संपत्ति के दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि संपत्ति के उचित दस्तावेज न होना एक बड़ी समस्या है और इस कारण ही विवाद पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति के उचित प्रलेखन से बैंकों से ऋण मिल पाएगा और अवैध अतिक्रमण से संरक्षण मिलेगा।
स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी। अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होगी।
राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तेजस्वी यादव को पार्टी संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। पटना में आज लालू प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इससे संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे निष्ठापूर्वक निभाएंगे।
ये बड़ी जिम्मेवारी है और बिहार को अव्वल राज्यों में लेके जाना है। हम लोग जो है बिहार के लोगों की तरक्की हो, हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रीजन है और हम लोगों के पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि हम लोग बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। सभी वर्गों का, हर लोगों का ख्याल रखेंगे और हम लोगों ने जो 17 महीने में किया वो आज तक जो है इनके 18 साल में काम नहीं है।
बैठक में दल के सांगठनिक चुनाव, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और इंडी गठबंधन के विभिन्न दलों के साथ संयोजन के मुद्दे पर भी विमर्श किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि कार्यकारिणी बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं।
सांगठनिक प्रस्ताव पे चर्चा हुई, राजनीतिक प्रस्ताव जो कि आज के देश की हकीकत है उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई और संगठन को कैसे और धारदार बनाया जाए वैचारिक रूप से और बूथ स्तर तक सांगठनिक प्रतिबद्धता के साथ। इन सब चीजों पर अलग अलग राज्यों से आए हमारे अध्यक्ष अपनी राय रखी और अपनी बात रखी।
पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बैठक में शामिल नहीं हुए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में कराए गए जातीय सर्वेक्षण को फर्जी बताया है। पटना के बापू सभागार में आज संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो नए सिरे से कराई जाएगी जनगणना। उन्होंने कहा कि इससे सभी वर्गों तक न्याय पहुंचेगा।
जाति जनगणना और हम छोड़ने वाले नहीं है, और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं, और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है।
श्री गांधी ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का लाभ समाज के लिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं।
हम चाहते थे कि जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही विजन था कि इस संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। हमें ये पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है।
इससे पहले श्री गांधी ने राजद नेता तेजस्वी यादव से एक स्थानीय होटल में मुलाकात की। इस दौरान राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर आंदोलनकारी बीपीएससी अभ्यर्थियों से भी मुलाकात की। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 20 और 21 जनवरी को पटना में आयोजित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति इसमें भाग लेंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समापन समारोह को संबोधित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने बताया कि दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों के योगदान विषय पर चर्चा और संवाद होगा।
20 से 21 जनवरी को देश भर के पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन पटना में आयोजित है। यह सम्मेलन 43 साल के बाद बिहार में हो रहा है और इसमें विभिन्न राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सचिव भाग लेंगे। पूरी बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी करेंगे और साथ में राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरिवंश जी उपस्थित हमेशा रहेंगे। कार्यक्रम का समापन बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा होगा और इस पूरे सम्मेलन की तैयारी के लिए व्यापक रूप से योजना बनाई गई है और योजना पूरी हो रही है।
विधानसभा अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि दो दिवसीय सम्मेलन से पहले देश के सभी विधानमंडलों के सचिवों की बैठक कल पटना में होगी। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने आज विधानसभा की पत्रिका विधान प्रबोधिनी का विमोचन भी किया। विधानसभा अध्यक्ष कक्ष में आयोजित समारोह में कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विभिन्न हितधारकों से विमर्श के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC ने पटना में वक्फ बोर्डों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि समिति वक्फ संपत्तियों, उनके प्रबंधन और विभिन्न अन्य मुद्दों के बारे में हितधारकों से चर्चा करेगी। श्री पाल ने बताया कि समिति संसद के आगामी बजट सत्र में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इसको सुपुर्द किया है वक्फ के अमेंडमेंट एक्ट को, तो अब इसमें बिहार में भी आकर के और यहाँ के डेलीगेशन से, यहाँ के ऑफिशियल के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, या जो बार काउंसिल के लोग हैं या लायर्स हैं, काफी डेलीगेशन हैं सुना, उनके साथ हमारी मीटिंग होगी क्योंकि हमें रिपोर्ट इसी बजट सेशन में देना है और बजट सेशन भी 31st डेट आ गया है, तो अब हमारे पास समय नहीं था, इसलिए आज हम पटना के दौरे पे आए हैं।
और अब खबरें महाकुंभ की। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में श्रद्धालु और तीर्थयात्री अब आकाशवाणी के कुंभवाणी समाचार बुलेटिन को सार्वजनिक संबोधन प्रणाली से लाइव सुन सकते हैं। आज सुबह 8:30 बजे कुंभवाणी समाचार बुलेटिन महाकुंभ नगर में सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के माध्यम से प्रसारित किया गया। 10-10 मिनट का कुंभवाणी समाचार बुलेटिन सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है।
इस पहल से श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को मेले से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कुंभवाणी समाचार बुलेटिन 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित होते हैं। कुछ लोगों ने आकाशवाणी समाचार के साथ अपने विचार भी साझा किए और इसे एक अच्छी पहल बताया।
मेरा नाम योगराज सिंह झाला है, मैं MP मध्य प्रदेश उज्जैन का निवासी हूँ और जब मुझे ये पता चला कि आकाशवाणी का कुंभवाणी समाचार का लोगों को सुनने का मौका मिलेगा तो यह बहुत ही अच्छा पहल है क्योंकि इससे लोगों को नई नई जानकारियां मिलेगी।
मेरा नाम तनु शर्मा है और मैं यहाँ प्रयागराज से ही हूँ। जब मुझे पता चला यहाँ कुंभ वाणी समाचार प्रसारित होगा तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे श्रद्धालुओं को भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी।
महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभ वाणी चैनल का शुभारंभ इसी महीने की 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में किया था। यह चैनल 26 फरवरी तक समाचार और अन्य कार्यक्रम प्रसारित करेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।
राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड में बढ़ोतरी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर राज्य के उत्तर पश्चिम उत्तर मध्य भागों में घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सुबह से ही पटना और आसपास के इलाकों में धूप खिली होने के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है।
धूप के साथ ठंडक बना हुआ है, इसी तरह का मौसम अगले 24 घंटों के दौरान बना रहेगा। मैदानी भागों में सर्दी का मौसम एवं कोहरे का प्रकोप, ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है।
भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि संविधान को बचाने की लड़ाई सभी को मिलकर लड़नी होगी। श्री भट्टाचार्य मुंगेर के टाउन हॉल में बदलो बिहार समागम को संबोधित कर रहे थे। मधुबनी जिले में नेपाल सीमा के करीब जानकी नगर के लठौवा में एसएसबी की 48वीं वाहिनी जयनगर इकाई की ओर से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड में 237 गांव के करीब 200 रैयतों को लंबे समय से लगान का भुगतान नहीं करने के कारण नोटिस जारी किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। तेजस्वी प्रसाद यादव अब संगठन से जुड़े सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार की जातीय जनगणना पर उठाया सवाल, कहा उनकी पार्टी की सरकार बनी तो नए सिरे से कराई जाएगी जनगणना। और वक्फ संशोधन अधिनियम पर विमर्श के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी पटना पहुंची, हितधारकों के साथ कर रही है विचार विमर्श। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।